एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। श्रोताओं का स्वागत है। ग्रंथसार की आज की कड़ी में हम एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध रचना की गहराइयों में उतरेंगे जिसने युद्ध की भयावहता को मानवीय संवेदना के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया।
हाँ बिल्कुल,
हम बात करें इरिश मारिया रिमार्क के कालजयी उपन्यास पश्चिमी मोर्चे पर सब शांत की। अंग्रेजी में तो ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम से मशहूर है ही।
जी,
ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है बल्कि पहले विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर जो भीषण लड़ाई हुई उसका एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको हिलाकर रख देता है, जिसे आप भूल नहीं सकते।
सही बात है।
और इसके लेखक इरिश मारिया रिमार्क वो खुद इस आग से गुजरे थे। सिर्फ 18 साल के थे जब जर्मन सेना में भर्ती हुए, कई बार घायल भी हुए और उन्होंने युद्ध की उस भयानक सच्चाई को नजदीक से देखा। और शायद इसी अनुभव ने उनकी कलम को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हमारा मकसद है इस उपन्यास के पन्ने पलटना और समझना कि ये आज भी इतना जरूरी और इतना शक्तिशाली क्यों है।
बिल्कुल, और ये अनुभव ही तो इस उपन्यास की कह सकते हैं आत्मा है। ये हमें सीधे उन खाइयों में ले जाता है जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला लगभग मिट चुका था। कहानी का केंद्र है पॉल बॉमर नाम का एक 19 साल का जर्मन छात्र।
अच्छा।
और उसके दोस्त।
अच्छा।
स्कूल में उनकी टीचर थे कांटोरिक। उनके जोशीले देशभक्ति वाले भाषणों से एकदम प्रेरित होकर पॉल और उसके सारे दोस्त, मतलब क्रॉप, मुलर, लेयर, बड़े जोश और गर्व से सेना में भर्ती हो जाते हैं।
हाँ, वो जवानी का जोश।
बिल्कुल, मन में वीरता की कहानियां हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, शायद एक रोमांच की कल्पना भी।
हाँ, वो आयरन यूथ या लोहे के युवक बनने का सपना, जैसा कांटोरिक उन्हें कहता था। लेकिन असलियत से सामना होते ही ये सारे सपने कैसे कांच की तरह टूट जाते हैं ना, यही उपन्यास की शुरुआत है।
सही कहा, गौरव और वीरता उसकी जगह मिलती हैं कीचड़ भरी खाइयां, लगातार बमबारी, जहरीली गैस के हमले और हर तरफ मौत।
और विडंबना देखिए, जिस टीचर ने उन्हें युद्ध में धकेला वो तो सुरक्षित बैठा है और ये बच्चे मौत के मुंह में।
हाँ, ये उपन्यास सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि उस पूरी खोई हुई पीढ़ी का दर्द बयान करता है। मतलब वो नौजवान जिनका सब कुछ, जवानी, भविष्य, सब युद्ध की भेंट चढ़ गया,
जो अगर गोलियों से बच भी गए तो अंदर से तो तबाह हो ही गए।
बिल्कुल, अंदर से खत्म हो गए। और रिमार्क इसे बिना किसी लाग लपेट के, बिना महिमा मंडन के दिखाते हैं। उपन्यास की शुरुआती देखिए, पॉल और उसकी कंपनी मोर्चे से लौटी है, आराम कर रही है। पता चलता है कि 150 सैनिकों में से सिर्फ 80 वापस आए हैं।
ओह, आधी कंपनी खत्म।
हाँ, लेकिन खाना पूरे 150 के लिए बना है और सैनिक उस खाने पर टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यही अब उनकी सबसे बड़ी चिंता है, जिंदा रहना, पेट भरना।
यही हमें उनके दोस्त फ्रांस के मेरिश का पता चलता है ना, अस्पताल में।
हाँ, कैमेरिश, उसका पैर कट चुका है और वो मर रहा है।
और यही वो जूतों वाला प्रसंग आता है, बड़ा मार्मिक लेकिन उतना ही यथार्थवादी।
हाँ, वो कैमेरिश के जूते। उसके साथ ही उसकी मौत से दुखी तो हैं, लेकिन उनका ध्यान उसके बढ़िया मजबूत जूतों पर भी है, क्योंकि मोर्चे पर अच्छे जूतों की कीमत बहुत ज्यादा है।
जान से कम नहीं।
बिल्कुल, म्यूलर वो जूते लेना चाहता है। ये दिखाता है कि युद्ध इंसान को कैसे एकदम बुनियादी जरूरत और बस जिंदा रहने की प्रवृत्ति तक ले आता है। भावनाएं जैसे पीछे छूट जाती हैं।
सही कहा, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये रिमार्क का शुरुआती संकेत है कि कैसे युद्ध इंसान की पहचान, उसकी संवेदनाओं को छीन लेता है। वो जूते जो एक के बाद दूसरे सैनिक के पास जाते हैं, वो जैसे जीवन की नश्वरता का प्रतीक बन जाते हैं।
और युद्ध की निर्मम व्यावहारिकता का भी, इसी निर्ममता को और गहरा करता है उनका ट्रेनिंग का अनुभव कॉर्पोरल हिमेलस्टोस के साथ।
हाँ, हिमेलस्टोस, वो डाकिया।
हाँ, वही डाकिया जो शांति काल में शायद एक आम सा इंसान रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी सत्ता मिलते ही कैसे वो रंगरूटों पर जुल्म करता है, उन्हें तोड़ता है, बेइज्जत करता है।
और ये अनुभव पॉल और उसके साथियों के मन से सत्ता और व्यवस्था के लिए जो थोड़ा बहुत सम्मान था वो भी खत्म कर देता है।
बिल्कुल, उन्हें समझ आता है कि वर्दी के पीछे कोई महान उद्देश्य या चरित्र हो ये जरूरी नहीं।
सही बात है, हिमेलस्टोस तो उस बड़ी मशीनरी का एक छोटा पुर्जा है जो इन युवाओं को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है।
और मजे की बात देखिए, जब यही हिमेलस्टोस मोर्चे पर पहुंचता है तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है, डर के मारे छिप जाता है।
हाँ, ये दिखाता है कि युद्ध का शोर मचाने वाले और उसमें असल में लड़ने वालों में कितना फर्क होता है। अच्छा, अब पॉल बॉमर की बात करते हैं, हमारे कथावाचक की। उसका जो सफर है वही तो इस उपन्यास का केंद्र है। कैसे एक संवेदनशील लड़का जिसे कविताओं में रुचि थी धीरे धीरे कठोर भावना शून्य सा सैनिक बन जाता।
ये बदलाव एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। वो देखता है कि युद्ध में सोचने समझने महसूस करने की जगह ही नहीं है। यहाँ सिर्फ वृत्ति काम करती है, खतरे को भापना, छिपना, मारना और बस जिंदा रहना। वो सीखता है कि क्रूरता ही कभी कभी बचाव का तरीका बन जाती है।
लेकिन इस प्रक्रिया में उसका जो अंदर का इंसान है वो मरता जाता है।
उसका अपनी पुरानी दुनिया से, किताबों से, परिवार से रिश्ता टूट जाता है।
हाँ, वो एक मानव पशु बनने की प्रक्रिया में है, जैसे रिमार्क कहते हैं, बस जीवित रहने की जद्दोजहद में लगा हुआ।
और इस अंधेरे में अगर कोई रोशनी की किरण है तो वो है साथीपन,
कॉमरेडशिप।
बिल्कुल, शायद यही युद्ध का एकमात्र सकारात्मक पहलू है जो रिमार्क दिखाते हैं, पॉल और उसके साथियों के बीच का गहरा रिश्ता, खासकर स्टानिस्लाउस काटजिंस्की यानी कैट के साथ।
कैट,
कैट 40 साल का अनुभवी सैनिक है। वो पॉल के लिए पिता भी है, गुरु भी, दोस्त भी, सब कुछ। वो जानता है मोर्चे पर कैसे जिंदा रहना है, कहां से खाना मिलेगा, कब बमबारी होगी। वो युवा सैनिकों का ख्याल रखता है।
उसकी मौजूदगी ही पॉल और दूसरों के लिए एक हिम्मत है।
बिल्कुल, वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, वो मुश्किल हालात में इंसानियत का प्रतीक है। उसकी समझदारी, उसका शांत स्वभाव और पॉल के लिए उसका स्नेह, ये रिश्ता उपन्यास के सबसे अहम हिस्सों में से है।
और ये दिखाता है कि युद्ध की भट्टी में बने ये रिश्ते खून के रिश्तों से भी गहरे हो जाते हैं। वहां क्लास, बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता।
सही कहा, वो एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, एक दूसरे के लिए ही मरते हैं।
लेकिन युद्ध तो किसी रिश्ते को, किसी इंसान को बख्शते नहीं। अल्बर्ट क्रॉप को ही लें, वो ग्रुप का विचारक था, है ना, युद्ध की बेतुकी बातों पर सोचता था।
हाँ, क्रॉप, उसका पैर कट जाता है और वो गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। उसका मानसिक पतन दिखाता है कि युद्ध सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी अपंग कर देता है।
यही रिमार्क का एक और गहरा संदेश है, युद्ध सिर्फ जान नहीं लेता, वो जीने की वजह भी छीन लेता है।
बिल्कुल, और पॉल के लिए शायद सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब उसे छुट्टी मिलती है और वो घर जाता है।
हाँ, वो घर वापसी वाला है।
घर जो पहले सुरक्षा और अपनेपन का मतलब था, अब पराया लगता है। वो अपने पिता की देशभक्ति की बातों से जुड़ नहीं पाता, माँ की चिंता उसे और तोड़ती है, अपने पुराने कमरे, अपनी किताबों से कोई लगाव महसूस नहीं होता।
उसे लगता है कि नागरिक जीवन की छोटी छोटी बातें, चिंताएं, ये सब कितनी बेमानी है।
एकदम, उसे एहसास होता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। युद्ध ने उसके और सामान्य जीवन के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर दी है।
ये अलगाव, ये संवाद की असंभवता कि युद्ध का अनुभव करने वाला और ना करने वाला कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते।
हाँ, ये उपन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये अलगाव और गहरा होता है जब पॉल वापस मोर्चे पर आता है। एक हमले के दौरान वो एक गड्ढे में फंस जाता है।
वो शेल होल वाला सीन?
हाँ, वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक गिरता है और बस जान बचाने की प्रवृत्ति में पॉल उसे चाकू मार देता है।
वो क्षण तो रोंगटे खड़े कर देता है।
यकीनन, वो फ्रांसीसी सैनिक जेरार्ड डोवाल तुरंत नहीं मरता। पॉल को उस मरते हुए अजनबी के साथ घंटों उस तंग गड्ढे में बिताने पड़ते हैं। वो उसकी कराहें सुनता है, उसकी धीमी होती सांसें महसूस करता है।
पहली बार दुश्मन का चेहरा इतना मानवीय, इतना करीब।
बिल्कुल, अपराध बोध से भरकर पॉल उसकी जेबें देखता है, उसकी पत्नी और बच्चे की तस्वीरें देखता है, उसका नाम, उसका पेशा, प्रिंटर, ये सब जानता है।
और तब पॉल उस मरते हुए सैनिक से बात करता है, उससे माफी मांगता है।
हाँ, वो कहता है, क्षमा करना साथी, हम हमेशा बहुत देर से देखते हैं, वे हमें कभी क्यों नहीं बताते कि तुम भी हमारी तरह गरीब शैतान हो, कि तुम्हारी माँ भी हमारी तरह ही चिंतित हैं, और हमें भी मौत का वही डर है, और वही मरना, और वही पीड़ा है। क्षमा करना साथी, तुम मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हो।
ये शब्द, ये तो युद्ध के पूरे विचार को ही व्यक्तिगत स्तर पर ले आते हैं। राष्ट्रवाद, सीमाएं, दुश्मन, सब बेमानी लगने लगते हैं।
सही कहा, पॉल को एहसास होता है कि जिसे उसने मारा वो भी उसी की तरह एक इंसान था, बस व्यवस्था ने उसे दुश्मन बना दिया। ये घटना पॉल का मोहभंग पूरा कर देती है।
यहीं से रिमार्क के मुख्य संदेश और ज्यादा साफ हो जाते ना। पहला, युद्ध का अमानवीकरण, कैसे ये सैनिकों को सिर्फ नंबर और औजार बना देता है।
बिल्कुल,
उनकी भावनाओं, पहचान को कुचल देता है। दूसरा, वो खोई हुई पीढ़ी का दर्द, कैसे इन युवाओं का आज और कल दोनों छीन लिया गया।
जैसा पॉल खुद सोचता है,
हम अब युवा नहीं रहे, हम दुनिया पर छा जाना नहीं चाहते, हम भाग रहे हैं, हम खुद से भाग रहे हैं, अपने जीवन से। हम 18 के थे और जीवन और दुनिया से प्यार करने लगे थे और हमें उसे गोलियों से छलनी करना पड़ा।
क्या लाइनें हैं?
तीसरा, सत्ता और राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना। कॉन्टोरिक जैसे शिक्षक, हिमल स्टोर्स जैसे अफसर, ये उस पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं जो युवाओं को मरने भेजती हैं खुद सुरक्षित रहकर। उपन्यास दिखाता है कि कैसे ऊंचे आदर्शों का इस्तेमाल भी विनाश के लिए किया जा सकता है।
चौथा, जैसा हमने कहा, साथीपन ही एकमात्र मानवीय सहारा है। और पांचवा, मौत की निरर्थकता। मौत बस एक संयोग है, कोई भी कभी भी मारा जा सकता है।
उपन्यास का आखिरी हिस्सा तो और भी उदास होता जाता है। जर्मन सेना हार रही है, रसद कम हो रही है, सैनिक थक चुके हैं, निराश हैं।
हाँ, पॉल और क्रोप घायल होते हैं, अस्पताल का अनुभव भी नरक जैसा है। क्रोप का पैर कट जाता है, वो वहीं रह जाता है। पॉल ठीक होकर फिर मोर्चे पर लौटता है,
लेकिन अब उसके पुराने साथी एक एक कर बिछड़ते जाते हैं। मुलर, लेयर और फिर सबसे अंत में कैट।
कैट की मृत्यु शायद पॉल के लिए आखिरी चोट साबित होती है। वो एक मामूली छर्रे से घायल होता है। पॉल उसे अपनी पीठ पर लादकर मीलों चलकर सुरक्षित जगह लाता है,
लेकिन जब वो पहुंचता है
तो पता चलता है कि रास्ते में ही एक और आवारा छर्रा कैट के सिर में लगा और उसकी मौत हो चुकी है। कैट की मौत के साथ पॉल का आखिरी भावनात्मक सहारा भी टूट जाता है, वो अब एकदम अकेला है।
अब पॉल के जीने की इच्छा भी जैसे खत्म हो चुकी है। वो युद्ध के अंत का इंतजार कर रहा है, लेकिन शायद उसे पता है कि उसके लिए शांतिकाल में भी कोई जगह नहीं बची है।
और उसकी मृत्यु होती है अक्टूबर 1918 में, युद्ध विराम से बस कुछ हफ्ते पहले। ये उपन्यास के सबसे मार्मिक और विडंबना भरे क्षणों में से हैं।
हाँ, और रिमार्क इसका वर्णन भी बड़े खास तरीके से करते हैं। पूरे उपन्यास में पॉल हमारा कथावाचक है, हम सब कुछ उसकी आंखों से देखते हैं, लेकिन पॉल की मौत का वर्णन अचानक तीसरे पुरुष में होता है।
बिल्कुल, जैसे कोई गुमनाम रिपोर्टर बता रहा हूँ कि वो उस दिन मारा गया जब पश्चिमी मोर्चे पर इतनी शांति थी कि सेना के रिपोर्ट में लिखने लायक भी कुछ नहीं था सिवाय एक वाक्य के, पश्चिमी मोर्चे पर सब शांत।
यही उपन्यास का शीर्षक है। क्या जबरदस्त विडंबना है, एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी पीड़ा, उसका सफर, और अंत में वो सेना के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, उसकी मौत रिपोर्ट करने लायक भी नहीं।
कहते हैं कि वो शायद एक तितली को देख रहा था या पकड़ने की कोशिश कर रहा था जब उसे गोली लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो अंत से संतुष्ट हो।
वो तितली विनाश के बीच सौंदर्य और जीवन का प्रतीक, शायद पॉल की खोई हुई मासूमियत और शांति की तलाश का आखिरी बिंब।
और इस तीसरे पुरुष वर्णन से रिमार्क शायद ये भी दिखाते हैं कि कैसे युद्ध व्यक्तिगत कहानी को मिटाकर उसे एक सामूहिक गुमनाम त्रासदी में बदल देता है।
ये उपन्यास पाठक को अंदर तक हिला देता है। ये युद्ध के प्रति किसी भी तरह के रोमांटिक ख्याल को पूरी तरह खत्म कर देता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि युद्ध में कोई गौरव नहीं, सिर्फ बर्बादी है, सिर्फ पीड़ा है, सिर्फ मौत है। और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये सब किसके लिए, किन आदर्शों के लिए इन लाखों युवाओं की बलि दी गई।
इसने वीरता की पारंपरिक धारणाओं को भी चुनौती दी। युद्ध में असली साहस शायद बम फेंकने या दुश्मन को मारने में नहीं,
बल्कि उस अमानवीय माहौल में जिंदा रहने, अपने साथियों का साथ निभाने और अपनी बची कुची इंसानियत को बचाने में है।
निस्संदेह, ये उपन्यास सिर्फ पहले विश्व युद्ध का दस्तावेज नहीं, ये हर युद्ध के खिलाफ, हर तरह की संगठित हिंसा के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रवाद और विचारधारा के बड़े बड़े नारों के पीछे हमेशा व्यक्तिगत जीवन होते हैं जिनकी कीमत चुकानी पड़ती है।
और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है, दुनिया भर में आज भी जो संघर्ष चल रहे हैं उन्हें देखते हुए।
ये हमें शांति और मानवीयता के मूल्य की याद दिलाता रहता है।
सचमुच, ये उपन्यास हमें सिखाता है कि युद्ध का असली चेहरा कितना भयानक है और कैसे राजनीतिक विचारधाराएं और सत्ता का खेल व्यक्तिगत जीवन को बेरहमी से कुचल सकता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता का पाठ शायद युद्ध के मैदान से दूर शांति और आपसी समझ में ही सीखा जा सकता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।